नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभरकर उदाहरण स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पंच जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और भारत और इंग्लैंड के बीच 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्वभर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने ये बात आज संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 वर्ष तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजाति लोगों के लिए शुरू किया गया। राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातियों समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आवा जनजातियों ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को आज दोपहर बाद लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के विकास में डॉ मनमोहन सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। सदन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के परिवार तक पहुंचाने के लिए सांसदों का एक भावपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और 3 अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले दोनों सदनों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर को भी श्रद्धांजलि दी। वित्त वर्ष 2025 में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आज संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए एक आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने इस समय आर्थिक सर्वेक्षण पर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की है।
मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा।
इधर केंद्रीय बजट 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें जताई जा रही है। इस पर आकाशवाणी समाचार ने कुछ विशेषज्ञों से बात की। एक रिपोर्ट।
हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कुछ विशेषज्ञों से कल पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ली। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आरसी परिदा ने उम्मीद जताई कि सरकार कौशल विकास और बेरोजगारी पर अधिक जोर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
आई डू एक्सपेक्ट that there should be some more concessions towards the salary class one. Number two, there should be Pan India skill development programs to our unemployed youth, which is the major mass of our population. Number three, there should be more fund for the development of rural areas, particularly in the northeast area. Then another emphasis that should be rural warehousing.
कृषि विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रुस्तम ने कहा कि सरकार को ऑर्गेनिक खेती और इसके तरीकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.
So especially when we look at the northeastern part and then currently here in Arunachal, I feel like organic, since they are very much focused on organic agriculture, and then it is very much a potential. And then when we see about especially the horticulture, like the kiwi cultivation and all, nowadays there is lots of demand. So I feel like they should more focus, or the budget should be more organic or farmers friendly practices, which will be able to sustain for a longer period of time.
प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही खेल और शारीरिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शंभू प्रसाद ने कहा कि सरकार को खेल के लिए अधिक से अधिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए.
गवर्नमेंट शुड लुक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज, लाइक फ्रॉम स्कूल लेवल. एज वी नो दैट इन अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स पर्सन आर देयर. The thing is, we have to identify from very beginning at school level. So I think the government should focus on infrastructure development. The budget allocation should be related to this infrastructure development school level.
Rakesh Dole, Akashvani Samachar, Itanagar.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी. लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं के योगदान के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता. नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि देश ने पहली बार लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है. उपराष्ट्रपति ने कार्यस्थल पर, राजनीति में या अन्य किसी भी स्थान पर महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस पर मंथन करने को कहा. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जल की गुणवत्ता पर टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. आयोग ने इस बारे में नोटिस जारी कर श्री केजरीवाल से जवाब मांगा था. जवाब में श्री केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि यमुना के पानी में जहर के संबंध में उनका पहले का वक्तव्य उसमें बढ़ते अमोनिया के स्तर के परिप्रेक्ष्य में था, और इसका मतलब पर्यावरण से जुड़े और इस मुद्दे के अलावा और कुछ भी नहीं था. दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिस वाज ने बताया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 1,65,14,000 मतदाता वोट डालेंगे. आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है. 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता स्टार प्रचारक रोड शो और रैलियां कर रहे हैं. महाकुंभ में हुए हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंच गया है. आयोग के सदस्य संगठन घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगी. बुधवार को महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ आयोग एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए. पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में खारी करमारा इलाके में नियंत्रण रेखा पर कुछ हथियारबंद आतंकवादियों की घुसपैठ के प्रयासों को सेना ने विफल कर दिया. पूरी रात जारी रहे अभियान में अनेक हथियार बरामद हुए हैं. ब्यौरे की प्रतीक्षा है. समझा जा रहा है कि घुसपैठ का प्रयास करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी रहे. क्वालालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 114 रन के लक्ष्य दिया है. और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ. नमस्कार.